ओम 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 विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण अंतर्गत 17वां श्लोक अविद्यावशगस्त्वन्यास तद्वैचित्र्याद अनेकदा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तमः प्रदानः प्रकृतेः तद्भोगाईश्वराज्ञया वियत् पवन तेजोऽम्बु भुवो भूतानि जज्ञिरे सत्वं सहि पञ्चभिस्तेषाम् क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसना घ्राणाख्यमुपजायते तैरन्तःकरणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका रजोंसहि पञ्चभिस्तेषाम् क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायूपस्थ ताभिधानानि जज्ञिरे बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण तै सर्वै सहितै प्राणो वृत्तिभेदात् सपञ्चधा प्राणोपानः समानश्च उदानव्यानोचते पुनः बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण पञ्चकैर्मनसाधिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भताम् ईशस् तयोर्व्यष्टि समष्टिताः। तो इयम् आत्मा परानन्द परप्रेमास्पदम् यत मानभूवम् हि भूयासम् इति प्रेमात्मनि चते। चिदानन्दमय ब्रह्म तयोरेक्यं प्रपद्यन्ते श्रुत्यन्ते सूपदिश्यते। संवित् एक है, संबित उत्पन्न विनाश नहीं होता, ये जो संबित है यही आत्मा है। आत्मा अलग, ज्ञान अलग ऐसा नहीं है। जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा की एकता है, अभिन्नता है। इस तरह ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म, ज्ञान और आत्मा, ये तीन अलग अलग चीज नहीं है। अभी तक के प्रसंग से आपको यही समझ में आ गई है और आना चाहिए। ऐसा जो ब्रह्म, ज्ञान और आत्मा की एकता है, यह आनंद रूप है, परम सुख का विषय है, परम प्रेमास्पद है। प्रश्न हुआ था कि यह आनंद रूपता का भान क्यों नहीं होता। आनंद ही आत्मा है, आत्मा ही आनंद है, तो मैं हूं इस भान के साथ साथ मैं आनंद रूप हूं, ये भान क्यों नहीं होता। फिर मैं हूं ये मानने वाला व्यक्ति विषयों की, क्षुद्र विषयों की स्पृहा करते हुए क्यों भटक रहा है। उसको विषय में तो कदापि भटकना नहीं चाहिए था। लेकिन संसार में देखते हैं 99.9% कोई एकादा सुखदेव जैसे होंगे जो आत्मा की परमानंदता का अनुभव करके विषयों के प्रति स्प्रिया न रखकर स्वात्म स्थिति में रहे, जो स्थिति प्रज्ञ में लक्षण बताया गया है। दुखे सु अनुद्विग्न मना, सुखे सुविगत स्प्रिया, अन्यथा तो संसार में सभी आब्रह्म पिपीलिका पर्यंत सभी विषयों के प्रति ही स्प्रिया रखते हुए उसी के लिए भटकते हुए दिख रहा है। कारण क्या है? इसका मतलब आनंद रूपता का आत्मा को भान नहीं हो पाता, और भान नहीं हो पाता है तो फिर उसको है करके क्यों कहना। तो कहा प्रतिबंधेन युज्यते, भान होने पर भी भान नहीं होता, ये प्रतिबंध के चलते ऐसा होता है। सामान्य भान होता है, विशेष भान नहीं होता। सुख और आनंद का अनुभव होता है, वो सुख और आनंद मेरा अपना स्वरूपगत है, ये बुद्धि नहीं हो पाती। और भ्रांति ये होती है कि ये सुख और आनंद विषय अनिष्ठ है, इसलिए मुझे विषय प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे सुख आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है। व्यामोहिक निबंधनम, क्या है वो प्रतिबंधक? तो यह अनादि अविद्यैव दृष्टांत दिया था, समानाविहारः। सामूहिक अध्ययन, वो जो सामूहिक अध्ययन का जो क्रम था उससे चलते अपने बेटे का आवाज उसके कान में पड़ते हुए भी नहीं पहचान पा रहा था। बच्चे सब पढ़ रहे हैं तो उसका बेटा भी पढ़ रहा है, दूसरों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसका बेटा पढ़ रहा है तो उसके कान में आवाज तो पड़ ही रही है, कान में आवाज पड़ते हुए भी नहीं पहचान पा रहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है? तो सहअध्ययन, जब सहअध्ययन प्रतिबंधक हटा, गुरु के सामने जब अभ्यास करने लगे, एक एक बच्चे अलग अलग, तब जब उसके बच्चे का बारी आई, उसका बेटा जब पढ़ने लगा तो फट खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, ये मेरा बेटा है। ये देखो, कैसे पहचाना अपने बच्चे की आवाज को उसने? क्योंकि प्रतिबंधक हट गया था। प्रतिबंधक क्या था? सहअध्ययन। अब सहअध्ययन हट गया तो एक अध्ययन रहा, तो उसको पहचान में आ गया। इसी तरह अपने आनंद रूपता का प्रतिबंधक के चलते विशेष अनुभव नहीं हो पा रहा है। अब यहां प्रतिबंधक क्या है ये बताना है। यह अनादि अविद्यैव दृष्टांत में अनादि अविद्या ही प्रतिबंधक है। व्यामोहिक निबंधन, वो अनादि अविद्या कहां है, कैसी है, किस तरह प्रतिबंधक करती है, उसको बताया। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता सत्चित आनंद रूप जो ब्रह्म है उसको आधार बनाकर और उसके प्रतिबिंब को लेकर माया अस्तित्व में आई। माया अस्तित्व में आने में हेतु क्या है? चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करना। क्योंकि सत्स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करके अस्तित्व में आ गई माया, अस्तित्व में आई। ध्यान देना ये पॉइंट, सत स्वरूप अंश को प्रतिबिंबित करके अस्तित्व में आई, चित स्वरूप अंश को ग्रहण करके सामर्थ्यशाली हो गई, आनंद स्वरूप अंश को प्रतिबिंबित करके माया में रमणीयता आ गया। ये माया में जो रमणीयता है जीव को आकर्षण करने की क्षमता, ध्यान देना ये पॉइंट, ध्यान देना, तुम्हें सब बताएंगे नहीं सब लोग, ये हम ही बता रहे हैं। माया में जो रमणीयता है जीवात्मा को आकर्षित करने की क्षमता है, माया में कहां से आ गई? ब्रह्म में जो आनंद अंश है उसके प्रतिबिंब को ग्रहण किया है, उस प्रतिबिंब के आनंद प्रतिबिंब से माया में वो रमणीयता आ गई। अन्यथा माया को कौन पूछने वाला है भाई? है? अन्यथा माया को कौन पूछेगा? ये प्रतिबिंब समन्वित तमो रजत सत्व गुणा, तीन गुण माया में उसके अपने निजी गुण हैं। माया के सेल्फ आइडेंटिटी है, सत्व रज गुण तम, ये तीन माया के अपनी निजी पहचान है। सेल्फ आइडेंटिटी है और ब्रह्म माया में जो होनापना वो सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, वो ब्रह्म से उधार लिया है माया के होनापना। और माया में कार्य करने की जो क्षमता है, सामर्थ्यता है, वो भी ब्रह्म से आई है। अब माया में जीवात्मा को आकर्षित करने की जो क्षमता है वह भी ब्रह्म से आया हुआ है, वह भी उधार है उसका, है माया का। ये रमणीयता जो है माया में, ये ब्रह्म के आनंद अंश से उधार लिया है। अब माया और ब्रह्म ये दोनों के अलग होते ही, यानी ब्रह्म के प्रतिबिंब माया में यदि नहीं पड़ पाया तो माया किम रूप होगी? माया होगी नहीं, नास्ति, ये नास्ति माया। ब्रह्म के अस्ति माने सत्ता हटते ही माया किम रूप होगी? नास्ति, बस। ब्रह्म के चित रूप का संबंध हटते ही माया निष्क्रिय, निस्सार। क्या ब्रह्म हटेगा? माया तो हटा सकते हो ना माया को, माया का प्रतिबिंब माया में पड़ने न दो, नहीं पड़ पाए, पड़े पढ़ने दो, है पढ़ने दो, वो अपना काम करती है करने दो, तुम अलग हो जाओ, यही तो यहां बताने जा रहे हैं। तो माया का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, आनंद रूप के प्रतिबिंब न पड़ने पर माया का जीव को व्यामोह करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तब इस प्रकार से माया टोटल में मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। अब ईश्वर को कैसे पैदा किया माया ने? ले अब आओ प्रसंग। कल हमने क्या किया? विद्यारण्य मुनि जी की फिलॉसफी के आधार पर ईश्वर को पैदा किया, यानी ईश्वर को बनाया। हालांकि ईश्वर अनादि है, समझे कि नहीं? हालांकि ईश्वर अनादि है, अनादि इस अर्थ में कि कब बना है ये पता नहीं। माया में विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब कब पड़ा है ये पता न चलने के कारण वो अनादि कह दिया है, समझे कि नहीं? लेकिन पड़ा जरूर है, पड़ा है, लेकिन कब पड़ा है ये पता नहीं, इसलिए अनादि। माया और ब्रह्म के प्रतिबिंब को माया ने कब ग्रहण किए है और ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण किए बिना माया अस्तित्व में नहीं आएगी, ब्रह्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करने पर ही माया अस्तित्व में आई है, तो ये पता लगाओ कि ब्रह्म का अस्तित्व प्रतिबिंब को माया ने किस दिन ग्रहण किया, ये पता न होने के कारण माया को भी अनादि। तब सत्व अंश में प्रतिबिंब कब पड़ा ये भी पता न होने के कारण ईश्वर भी अनादि। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट विचार करो, हा तुम्हें यह अवसर कभी नहीं मिलने वाला इस तरह वेदांत के पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले समझने का अवसर क्लास कभी नहीं मिलने वाला है। पहले ये समझो ब्रह्म, दूसरे नंबर में समझो माया, तीसरे नंबर में समझो ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में पड़ना, तो प्रतिबिंब से युक्त होने पर माया अस्तित्व में आ गई, अन्यथा माया अस्तित्व में न आती। अब माया में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणात्मी का जो माया है, ये तीन गुण के चलते तीन माया नहीं है, माया का तीन भेद नहीं है। तीन गुण के चलते माया का तीन भेद है ये नहीं, तीन गुण मिलकर माया एक है। अब माया के फिर तीन भेद हैं, विशुद्ध सत्व भेद, मलिन सत्व भेद और विशुद्ध तमो भेद। यहां तीन भेद हैं। विशुद्ध सत्व अंश में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा है, उस विशुद्ध सत्व उपाधि के सहित प्रतिबिंब का नाम पड़ा ईश्वर। केवल प्रतिबिंब का नाम ईश्वर नहीं है, है? क्योंकि उपाधि के बिना प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, प्रतिबिंब के बिना ईश्वर सिद्ध होगा नहीं, इसलिए उपाधि के सहित प्रतिबिंब का नाम क्या हुआ? हाँ, दिस इज वर्ड डे ईश्वर का, ये वर्थ है। डे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्थ है, ईश्वर की पैदाइश की प्रक्रिया है। ये कब किस दिन पड़ा है ये पता चल जाता तो हम बर्थडे मना लेते, ये दिन पता न चलने के कारण ईश्वर का बर्थडे नहीं मना रहे हैं। कृष्ण का दिन पता था इसलिए कृष्ण बर्थडे, राम का दिन पता था इसलिए राम का बर्थडे, सगुण साकार का दिन पता होने के कारण हम बर्थडे मनाते हैं, सगुण निराकार का दिन पता न होने के कारण बर्थडे नहीं मिला, नहीं मनाते, लेकिन बर्थ है जरूर। यही सिस्टम है बर्थ का, ये हो गया ईश्वर। अब ईश्वर हुआ तो जीव भी होना पड़ेगा कि नहीं? तो अब जीव कैसे बना? तुम्हारे शरीर का बर्थडे तो तुम लोग केक खाते रहते हो, इसलिए तुम्हें बाई हार्ट होगा, है ना? तुम्हारे शरीर का जो बर्थडे है वो तो केक खाते रहते हो, इसलिए तुम्हें पता है कि कब है तुम्हारा शरीर का बर्थडे। अब यहां प्रश्न है कि तुम्हारा माने जीवात्मा का। दुनिया में जो जीव हैं, जितने जीव हैं, सब के सब जीव कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कब पैदा हुए ये तो कोई नहीं कह पाएगा, इसलिए जीव भी अनादि है। समझे कि नहीं? कब पैदा हुआ, कब बना, ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा, इसलिए जीव को क्या कहेंगे? अनादि। ईश्वर जैसे अनादि, ब्रह्मा अनादि, माया अनादि, ईश्वर अनादि, जीव अनादि, जगत अनादि। समझे कि नहीं? और इन सब का परस्पर संबंध अनादि। इनका परस्पर संबंध कब हुआ है? अनादि। षडेते अनादयः, एते षड, ये छह वस्तु क्या है? अनादि है। कौन कौन? ब्रह्मा, माया, ईश्वर, जीव, जगत, और इन सब का परस्पर का संबंध। छह हो गए कि नहीं? इस अनादि है। लेकिन ये कब हुए हैं ये पता नहीं है, लेकिन कैसे हुए हैं ये पता है, प्रक्रिया पता है, होने की प्रक्रिया पता है। समझे कि नहीं? कब हुए हैं ये पता नहीं, कब हुए हैं ये पता नहीं, इसलिए अनादि। कैसे हुए हैं ये प्रक्रिया तुम जान लो। माया अस्तित्व में कैसे आई ये तो पता चल गया, बोलो कैसे आई? चिदानंदमय ब्रह्म का प्रतिबिंब ग्रहण करके अस्तित्व में आई। ये ईश्वर कैसे बना? विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो उपाधि सहित प्रतिबिंब को ईश्वर कहा गया, वो ईश्वर बन गया। अब तीसरे नंबर में जीव के, जीव कैसे बनता है वो भी सुन लो भाई। अविद्या वशभुस्त्वन्यास तद्वैचित्र्याद अनेक कधा। अविद्या में यानी मलिन सत्व में, विशुद्ध सत्व को माया कहा, मलिन सत्व को अविद्या का ऊपर परिभाषा कर दिया गया है, ये भूलना नहीं। अविद्या में अर्थात मलिन सत्व में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा तो मलिन सत्व उपाधि हो गया, समझे कि नहीं? मलिन सत्व उपाधि हो गया और उस मलिन सत्व में जो प्रतिबिंब पड़ा उपाधि के सहित प्रतिबिंब का नाम क्या पड़ा? जीव पड़ा। ये जीव के अस्तित्व में आने का, जीव बनने का ये प्रक्रिया है। लेकिन कब पड़ा है ये पता नहीं, इसलिए अनादि है, ये भी बात स्पष्ट तो समझ लेना है। तब ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? प्रक्रिया तो दोनों बराबर ही है। विशुद्ध सत्व में प्रतिबिंब पड़ा तो उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम ईश्वर पड़ा, मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा उपाधि मलिन सत्व के सहित प्रतिबिंब का नाम जीव पड़ा। तो इतना ही जीव में और ईश्वर में भेद होने का कारण नहीं है, इसके अलावा भी और कारण है। वो कारण स्पष्ट सुन लो। अविद्या वशगस्तु अन्य, ये ध्यान देना, विशुद्ध सत्व में जो प्रतिबिंब पड़ा था उसने अपनी उपाधि को, ध्यान दो, कल हमने कहा था प्रतिबिंब ने जिस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ा था उस प्रतिबिंब ने अपनी उपाधि को अपने रंग में रंग दिया, यानी अपने वश में कर लिया, वो हो गया ईश्वर। तो ईश्वर हो गया स्वतंत्र, समझे कि नहीं? दूसरे को अपने वश में कर सके तो वही तो स्वतंत्रता है, दूसरे के वश में हो जाना यही परतंत्रता है। स्वतंत्रता और परतंत्रता की परिभाषा क्या है बोलो? है स्वतंत्रता और परतंत्रता की परिभाषा क्या है? दूसरों को अपने वश में करना, दूसरे के वश में न होना, ये स्वतंत्रता। दूसरे को अपने वश में कर न सकना, दूसरे के वश में होना, ये परतंत्रता। अब ईश्वर की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता कैसे है ये श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कल स्फटिक और जपा कुसुम की, हाँ, वो दृष्टांतों को भूलना नहीं। क्या दृष्टांत था? स्फटक मणि को सामने रखा, उसके सामने लाल सुर्ख लाल जपा कुसुम को रख दिया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। स्फटिक मणि का जपा कुसुम से संबंध नहीं, जपा कुसुम का स्फटिक मणि से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जपा कुसुम वनस्पति कैटेगरी का है, स्फटिक मणि स्टोन कैटेगरी का है, पत्थर का, इस बटेक मणि पत्थर ग्रुप का है, जपा कुसुम वनस्पति ग्रुप का है। स्पष्ट रूप में वनस्पति ग्रुप जीव चेतना के ग्रुप में आता है, स्फटिक पत्थर ग्रुप जड़ के रूप में, जड़ ग्रुप में चला जाता है कि नहीं, बोलो क्या संबंध है उनका? कोई संबंध नहीं। फिर भी चैतन्य होते हुए भी वनस्पति का प्रतिबिंब जड़ स्फटिक में पड़ गया कि नहीं है? पड़ा कि नहीं? तुम जिंदे हो, तुम्हारा मिरर मरा हुआ है, मिरर में है प्राण, तुम्हारे में प्राण है कि नहीं? तुम प्राणवंत हो और मिरर दर्पण अप्राण है, जड़ है, तुम्हारा और वो दर्पण का क्या संबंध है? फिर प्राणवंत तुम्हारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? इसी तरह वनस्पति ग्रुप जपा कुसुम, पत्थर ग्रुप स्फटिक, कोई संबंध नहीं। इसके बावजूद भी जपा कुसुम का प्रतिबिंब स्फटिक मणि में पड़ता है कि नहीं? पड़ गया। अब जपा कुसुम लाल था इसलिए उसका प्रतिबिंब भी लाल ही हो गया। यादृश बिंब तादृश प्रतिबिंब, बिंब जैसा है प्रतिबिंब वैसा ही है, तो प्रतिबिंब भी लाल हो गया। प्रतिबिंब लाल हो गया ये बात तो समझ में आती है, दिखने में क्या आया? स्फटिक भी लाल हो गया, उपाधि भी लाल हो गया, तो प्रतिबिंब ने अपनी उपाधि को अपने बस में कर लिया, यानी अपने रूप में बदल दिया। ये किसकी स्वतंत्रता है बोलो? प्रतिबिंब की स्वतंत्रता। यहां पर हमको इतने अंश लेना है, प्रतिबिंब ये स्वतंत्र हो गया कि उपाधि को अपने बस में कर लिया। अब उपाधि प्रतिबिंब को, लाल प्रतिबिंब को अन्यथा नहीं कर सकता। स्फटिक उपाधि सफेद है कि लाल है? सफेद है। सफेद स्फटिक में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी सफेद होना चाहिए कि नहीं? यदि प्रतिबिंब सफेद हो गया होता तो उपाधि स्वतंत्र होकर प्रतिबिंब परतंत्र होता, समझ गए ना? क्योंकि यहां उपाधि स्वतंत्र होकर नहीं, प्रतिबिंब स्वतंत्र होकर उपाधि परतंत्र हो गया, तो प्रतिबिंब के रूप में उपाधि को बदलना पड़ा। ये ईश्वर का भाग मैंने कल भी बताया, आज भी और स्पष्ट कर दिया है। अब इधर दूसरा प्रतिबिंब पड़ा कहां? मलिन सत्व अर्थात अविद्या में पड़ा। यहां क्या हो गया? प्रतिबिंब उपाधि के बस में हो गया। उपाधि जैसा है प्रतिबिंब वैसा ही हो गया। अब एग्जाम्पल सुन लो, तुम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो देखा है ना? है ना? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो देखा है। तुम बिल्कुल सफेद कपड़ा पहनकर तुम्हारा यदि फोटो खींचा जाए तो वहां पर तो तुम्हारा कपड़ा सफेद है, वो सफेद ही होगा फोटो में, हां ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन कपड़ा तुम्हारा लाल है, सुर्ख लाल, हां कपड़ा लाल कपड़ा पहनकर तुम फोटो खिंचाने जाओ, ब्लैक इन व्हाइट कैमरे से यदि फोटो खींचोगे तो फोटो के कपड़ा का कलर कैसा होगा? काला होगा कि नहीं बोलो? बिंब लाल था, प्रतिबिंब भी लाल होना चाहिए था, फोटो प्रतिबिंब, लेकिन क्या हो गया? काला हो गया। उस कैमरे की विशेषता थी कि लाल को काला बनाकर दिखा दिया। ये तो कैमरे की बात आ गई, ये तुम्हें समझ में आए कि नहीं? अब दूसरा उदाहरण, ज्यादा समझ में आ जाए ऐसा उदाहरण मैं दूसरा दे रहा हूं। तुम लाल कपड़ा पहनकर हरे रंग का रंग से रंगा हुआ पानी, हरा पानी, समझ गए कि नहीं बोलो? उस पानी में आप प्रतिबिंब देखने जाओ, छाया देखने जाओ, कौन से पानी में? हरे रंग का पानी। सफेद रंग का कपड़ा पहनकर उस हरे रंग के पानी में प्रतिबिंब देखने जाओ तो पानी में प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं? पानी है इसलिए प्रतिबिंब तो पड़ेगा। अब बिंब सफेद है तो प्रतिबिंब भी सफेद होना चाहिए कि नहीं? हरे रंग के पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो प्रतिबिंब का रंग कैसा होगा? सफेद का, सफेद का हरा हो जाएगा, लाल का चॉकलेट का हो चाहे काला हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट ही तो है और क्या। लेकिन लाल का लाल तो होगा नहीं ना, होना चाहिए। क्या हुआ? पानी उपाधि है, कपड़ा बिंब है, उपाधि वाले जो पानी है, पानी रंग वाला है, कलर वाला है, तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा वो प्रतिबिंब उपाधि जैसा है, जिस रंग का है, उसी रंग में प्रतीत होने लगा कि नहीं? प्रतिबिंब की अपनी बिंब जैसा है वैसा आइडेंटिटी रही। अब इधर जपा कुसुम में, दृष्टांत में, स्फटिक जपा कुसुम में बिंब जैसा है, प्रतिबिंब की वैसे ही आइडेंटिटी बनी रही। बात समझ में आई कि नहीं? और इधर पानी में, इधर पानी में बिंब जैसा है, प्रतिबिंब की आइडेंटिटी वैसे ही बनी नहीं रही है, उपाधि जैसा है वैसा बन गया, मलिन हो गया। पानी मलिन होने के चलते बिंब स्वच्छ होने पर भी, कपड़ा स्वच्छ होने पर भी, उस स्वच्छ बिंब का प्रतिबिंब भी स्वच्छ होना चाहिए था, लेकिन होना क्या गया? पानी मलिन होने के चलते पानी जैसा है उसी रूप में प्रतिबिंब बदल गया, तो क्या हुआ? पराधीन हो गया कि नहीं प्रतिबिंब? उपाधि के अधीन हो गया कि नहीं? बिंब के समान अपने आइडेंटिटी बनाए रख पाया? उधर पहला दृष्टांत है जपा कुसुम का, ईश्वर का दृष्टांत जपा कुसुम और स्फटिक मणि में पड़ा हुआ जपा कुसुम का प्रतिबिंब ईश्वर का दृष्टांत। मलिन में यानी हरा पानी, लाल पानी, अब देख लो दृष्टांत, लाल पानी है वहां तुम सफेद कपड़ा पहनकर खड़े होगे, उसका प्रतिबिंब पानी में कैसा दिखेगा? हैं? तो नियम क्या था? सफेद कपड़े का प्रतिबिंब सफेद ही होना चाहिए था। हो पाया? उपाधि का रंग में बदल गया। कौन? प्रतिबिंब। अब ये जीव सब क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब। ईश्वर क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब। ईश्वर की भी ब्रह्म का प्रतिबिंब, जीव भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो जीव और ईश्वर में अंतर क्या हुआ? जीव उपाधि के अधीन होकर बैठ रहा है, ईश्वर स्वतंत्र होकर बैठ रहा है। ये दो दृष्टांतों से जीव और ईश्वर के अंतर में फर्क पड़ा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं तुम्हें? ये क्योंकि तुम्हारी उपाधि मलिन है, इसलिए तुम पराधीन हो गए। और इतना ही नहीं, अविद्या बस गह, उपाधि के बस में गया कौन? प्रतिबिंब, उसी का नाम पड़ गया जीव। अविद्या वसग, अविद्या में प्रतिबिंब, ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या वसग, अविद्या के बस में हो गया। अन्य, अन्य माने दूसरा प्रतिबिंब, अविद्या वसगस्तु अन्य तद वैचित्र्याद अनेकदा। अविद्या की जो मलिन सत्वता की तारतम्य भेद, इसलिए मलिन सत्व है, इसलिए मलिन सत्व में तारतम्य भेद होगा। तारतम्य माने कुछ ज्यादा ही मलिन होगा, कुछ थोड़ा मलिन हो, मलिन तो मलिन, डार्क मलिन, स्लाइट मलिन है? ये तारतम्य भेद है ना। 100% मलिन, 80% मलिन, 75% मलिन है, 50% मलिन, 40% मलिन, 25% मलिन। 25% मलिन माने मलिन कम हो गया ना, स्वच्छता ज्यादा। 100% मलिन माने बिल्कुल मलिनता ज्यादा। इसको कहते हैं तद वैचित्र्या, ये तारतम्य भेद, ये तारतम्य भेद। इसके चलते अनेक रहा, ये मालिन्यता में अनेकता है, उपाधि में अनेकता है। उपाधि में भिन्न भिन्नता, तारतम्य भेद के चलते भिन्न भिन्नता होने के कारण जीव कितने हो गए? अनेक हो गए। शुद्ध सत्व में तारतम्य भेद नहीं है, इसलिए ईश्वर एक हो गया। उपाधि एक है, इसलिए ईश्वर भी एक ही हो गया। मलिन सत्व में मलिनता के तारतम्य भेद है, इसलिए जीव अनेक हो गए। जीव अनेक होने में जीव की उपाधि भिन्न भिन्न है, उपाधि भिन्न भिन्न के होते हुए उपाधि के चलते जीव में भिन्न भिन्नता सिद्ध हो गया। अविद्या वसगोस्त्वन्यस्तद वैचित्र्याद अनेकदा। अनेकदा माने देवता, ईश्वर अलग है, देवता अलग है, हो ध्यान देना। ईश्वर किस कोटि में जाता है? मलिन सत्व में प्रतिबिंब कोटि में जाएगा, नहीं सॉरी, देवता। देवता किस कोटि में जाएगा? वही मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब के कोटि में जाएगा। लेकिन जीव की मनुष्यों की उपाधि और देवता की उपाधि में मलिन सत्व तारतम्य की भिन्नता है। कुछ कम मलिनता है देवता की उपाधि में, उनकी उपाधि की मलिनता से जीव की मलिनता कुछ ज्यादा है, और तुम्हारी मलिनता से वनस्पतियों की मलिनता कुछ ज्यादा है। वनस्पतियों की उपाधि की मलिनता से तुम्हारी मलिनता कुछ कम मलिनता है। यह अर्थ समझ लेना हो, हाँ। मनुष्यों की उपाधि की मलिनता से पशुआदि की उपाधि कुछ गाढ़ा मलिनता है। पशुआदि की जो मलिन उपाधि है उससे मनुष्यों की उपाधि कुछ कम मलिनता है। ये तारतम्य भेद, तारतम्य हाँ, तद वैचित्र्यात् का अर्थ ये है। अनेकता सा उपाधि मलिन सत्व सा कारण शरीरम स्यात्, वही जीवात्मा की जीवात्माओं के कारण शरीर कहलाता है। मलिन सत्व बोलो, अविद्या बोलो, अविद्या का न अविद्या में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसको जीव का, अविद्या के तारतम्य भेद से जीव आत्मा अनेक प्रकार के हो गए। वो जो अविद्या है वही जीवात्माओं के कारण शरीर कहलाता है। क्या समझे? वो तुम्हारा पहला शरीर है कारण शरीर। अविद्या मलिन सत्व, ये पर्यायवाची शब्द है, यहां ध्यान देना। मलिन सत्व कहना और अविद्या कहना ये पर्यायवाची है, एक ही अर्थ में। कहीं अविद्या कहा गया है, कहीं मलिन सत्व कहा गया है। अब तुम्हें अविद्या मन नहीं है, पसंद नहीं है, तो मलिन सत्व कह दो, बात तो वही है, है? बात वही है। मलिन सत्व नहीं तो अविद्या कहो। वह क्या है? कारण शरीर स्यात्। सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। ब्रह्म का मलिन सत्व अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा, मलिन सत्व उस प्रतिबिंब का, बिंब नहीं है, प्रतिबिंब का कारण शरीर हो गया। वो प्रतिबिंब कहो चाहे जीव कहो, पर्यायवाची शब्द हो गए। मलिन सत्व में प्रतिबिंबित प्रतिबिंब कहो चाहे जीवात्मा कहो, उसको क्या कहते हैं? प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। उस कारण शरीर में अहम ये अभिनिवेश करने वाला प्रतिबिंब चिदाभास, उसका नाम क्या पड़ा? प्राज्ञ। तो तीन हो गए चैतन्य, एक हो गया ब्रह्म चैतन्य, दूसरा हो गया ब्रह्म चैतन्य का शुद्ध सत्व में प्रतिबिंब, शुद्ध सत्व सहित प्रतिबिंब ईश्वर चैतन्य, तीसरा हो गया ब्रह्म का मलिन सत्व में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उस मलिन सत्व सहित प्रतिबिंब का नाम हो गया प्राज्ञ। जीव कहो प्राज्ञ कहो, एक ही चीज है। तो प्राज्ञ अनेक है, ध्यान देना। जीव अनेक हैं का मतलब क्या हुआ? तद वैचित्र्याद अनेकदा का मतलब क्या हुआ? प्राज्ञ अनेकदा। और क्या कहेंगे? और भी ये समझना बहुत जरूरी है। ये तुम समझ गए तो वेदांत में मास्टर हो गए, हीरो हो गए, नहीं तो जीरो के जीरो ही हो गए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।